हाँ जी
बाबा जी ने कहा है कि रिकॉर्ड चलाओ।
हाँ,
एक तरफ बोला जाता है कि भक्ति मार्ग का एक भी संस्कार रहा तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। एक तरफ कहते हैं रिकॉर्ड चलाओ, रिकॉर्ड चलाना माना गीत सुनना भक्ति मार्ग।
मुरली में तो ऐसे ही बोला कि तुम बच्चों को गीत गाना नहीं है और गीत सुनना भी नहीं है। अब बाबा तो बार बार रिकॉर्ड के याद करते हैं, रिकॉर्ड याद करते हैं और टोली याद करते हैं। याद करते हैं कि नहीं है? वो छोटा बाबा है या बड़ा बाबा है? है
छोटा बाबा
है। और वो बीबी है कि मियां है? तो बीबी है। और भाइयों के लिए कहा जाता है तुम सब भक्तियां हो, या माताओं के लिए कहा जाता है? माताओं के लिए कहा जाता है तुम सब भक्तियां हो, तुम सब द्रौपदियां हो, तुम सब सीताएं हो, तुम सब पार्वतियां हो। तो जिनके लिए बोला जाता है भक्तियां, उनमें बड़े से बड़ी भक्ति कौन हुई? भक्ति कहां से आती है? भक्ति रावण से आती है। तो गलत तो नहीं कर रहे थे,
तो माता के पार्ट में बोल रहे
थे। हाँ, माता के पार्ट में ये कर सकते हैं। और
बाबा भक्ति मार्ग में दिखाते हैं जो द्वारिका में जब कृष्ण जरासंध ने कृष्ण के ऊपर आक्रमण करता है, उसके बाद एक मृच राजा मुस्लिम राजा को बुलाता है, तो कृष्ण उसको डरता है, उसके इसलिए अंदर में रहता है, फिर उसको छल में बुला के लेते हैं, फिर एक पहाड़ के अंदर में एक ऋषि सोया होता है, उसके पास में जैसे वो ऋषि आंखें खोलता है तो कृष्ण ने उसके ऊपर चादर ढक देता है, और वो महाराजा आकर के जब चादर निकलते हैं वो आंख खुलता है तो वो भस्म हो
जाता है। आप तो लंबी लंबी कथा बता रहे हैं। एक एक प्रश्न पूछिए। हाँ,
लेकिन वो कैसे शूटिंग होता है?
हैं?
वो जो मृच राजा बाद में भस्म हो जाता है तो दृष्टि से भस्म होता है।
हैं?
दृष्टि से वो मृच राजा भस्म हो।
हाँ, तो कोई पावरफुल होगा ना, ऐसा पावरफुल होगा ना कि जब जगता है तो दृष्टि से ही भस्म हो जाता है। शास्त्रों में कौन से देवता का गायन है कि आंख खुली और भस्म हो गया? हैं? शंकर के लिए गायन है। हाँ,
बाबूजी किसे बोला है?
हैं?
बाबूजी किसे बोला?
बाबूजी के लिए थोड़े ही कहेंगे कि प्रोग्राम बना के आओ, वो तो जब चाहेंगे तब आ जाएंगे, जब चाहें तब चले जाएंगे। बड़ा आदमी है छोटा आदमी है? हाँ, बड़ा आदमी है। औरों के लिए तो कंडीशंस होती है, है? एक सप्ताह के लिए आना है, तारीख डिक्लेयर करके आना है, समय बता के आना है। और बाबूजी के लिए कोई बंधन? कोई बंधन नहीं है। तो कौन हुआ बाबूजी?
ब्रह्मा।
ब्रह्मा बता के आता है, है? बता के नहीं आता है?
बता के आता है।
तो फिर तो बाबूजी कहाँ हुआ? शिव बाबा का कोई टाइम नहीं है, जब चाहे तब आ जाते हैं और जब चाहे तब चले जाते हैं। उनको बुलाना पड़ता है क्या? बुलाने से आते हैं क्या? नहीं, बुलाने से तो आते नहीं। तो ये बाबूजी है।
आज की मुरली में अष्टवक्र ऋषि के बारे में भी आया, तो उसकी अष्टवक्र ऋषि का भी बहुत गायन है, लेकिन उसका फिर संगम पर कैसे शूटिंग होता है?
आठ जगह से टेढ़ा माने वक्र, अष्टावक्र, आठ रानियां रही होंगी, उनको रानियां कहेंगे कि पटरानियां कहेंगे? और पटरानियां एक धर्म की होती है या अलग अलग धर्मों की होती है? अलग अलग धर्मों की होती है। तो आठ जगह से तोड़ दिया। क्या किसी ने गर्दन मरोड़ी एक जगह से टेढ़ा हुआ? किसी ने है किसी ने कमर तोड़ी दूसरी जगह से टेढ़ा हुआ, ऐसे तो त्रिभंगी लाल गया हुआ है। क्या त्रिभंगी लाल? खास खास तीन नारियों ने तोड़ा। और तीन रानियां कौन कौन सी हैं खास खास, जो शास्त्रों में बार बार दिखाई जाती हैं? है सत्यभामा, रुक्मणी और जामवंती। जामवंती कौन है? है जामवंती कौन है? जो बाले, जो बालों वाले होते हैं वो कौन से देश के होते हैं?
सिख
धर्म। हाँ सिख धर्म में, पंजाब में बड़े बड़े बालों वाले होते हैं, है? तो शास्त्र में उनको रिच की तरह दिखाई दिया जामवंत। और जामवंत की बच्ची का नाम जामवंती दे दिया। ऐसे ही सत्यभामा, कैसी बा? हाँ कैसी माँ बा? सच्ची माँ बा। तो जितनी भी नदियां हैं उन नदियों में सच्चाई सबसे ज्यादा कौन सी नदी में है? गंगा में। सबसे जास्ती ज्ञान भी लेती होगी, ज्ञान की सफलता भी होती होगी। कहते हैं उनके पास एक सामंतक मणि थी। किनके पास? उनके पिताजी के पास थी, पिताजी ने गंगा जी को दे दी। तो उस मणि से 20 मन सोना रोज निकलता था। अब बताओ वो कौन सी मणि होगी? आत्मा रूपी मणि। उस आत्मा रूपी मणि से ऐसी रोशनी निकलती थी कि ढेर सारी सोने जैसी सच्ची आत्माएं निकल पड़ती थी। उनका नाम दिया सत्यभामा और तीसरे रुक्मणी। सबसे ज्यादा मान किसका था? रुक्मणी का। ऐसे ही पांच रानियां पांच धर्मों की और भी थी। हरेक ने एक एक अंग तोड़ा। क्या जब मुरली बजाते हैं तो बांह टेढ़ी होती है कि नहीं है? हाँ। कोहनी से भी टेढ़। एक ने तोड़ा दूसरी कोहनी, दूसरे ने तोड़ी। और टांगे जब मोड़ते हैं तो जो घुटने हैं वो भी टेढ़े हो जाते कि नहीं है? वो भी टेढ़े हो जाते। एक घुटना एक ने तोड़ा, दूसरा घुटना दूसरे ने तोड़ा। फिर टखना, टखना माने पांव और टांग के बीच में जो पांव होता है ना, तलवा, एड़ी, एड़ी के पास वो टखने भी दो हैं। तो दो टखने, दो रानियों ने वो दो टखने तोड़ दिए। तो देखो कैसी कैसी बातें बनाई हुई हैं। अष्टावक्र गीता, जैसे कृष्ण की गीता वैसे ही अष्टावक्र गीता हो गई। जो कृष्ण का नाम है वो ही अष्टावक्र है। हाँ, और
जैसे कितने की जिस्तन में ही बाबा, जिस्तन में ही बाबा प्रवेश करते हैं उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़ता है। तो ऐसे तो बाबा 107 में भी प्रवेश करते हैं ना, 106 के, तो क्या उनका नाम भी ब्रह्मा रखना पड़ेगा?
107
जिनका नाम ब्रह्मा रखना पड़ता है उसे ब्रह्मा के कितने सिर दिखाए जाते हैं?
पांच।
गैन तो है ना, पंचमुखी महादेव भी बनता है ना, कंपिल में यादगार बनी हुई है पंचमुखी महादेव, चौमुखी महादेव। तो चार ब्रह्मा के मुख गाए हुए हैं, चित्र बनाए हुए हैं, मूर्तियां बनाई हुई हैं, पंचमुखी ब्रह्मा भी गाया हुआ है, लेकिन 108 मुखी ब्रह्मा गाया हुआ है क्या? है? हाँ, क्यों? क्योंकि पांच ब्रह्मा हैं, तो विष्णु भी कितने होंगे? पांच ही विष्णु हुए। परंतु चार ब्रह्मा के मुख ऐसे हैं जो ब्रह्मा सो विष्णु चार भुजाओं के रूप में पार्ट तो बजाते हैं। भुजा माने मददगार, लेकिन वो भुजाएं भी किसी के कंट्रोल में चलती हैं या अपने आप चल पड़ती हैं? तो किसके कंट्रोल में चलती होंगी? है नहीं, जो पांचवा मुख है जो काट दिया गया माना देहभान अलग हुआ, देह अलग हो गई और आत्मा अलग हो गई, तो वो आत्मिक स्थिति में रहने वाला बुद्धि का पार्ट लगाया हुआ है। विष्णु में जो बुद्धि के रूप में पार्ट बजाने वाला है वो ही चार भुजाओं को चलाता है। इसलिए पांच ब्रह्मा गाये हुए हैं। और
बाबा, चंद्रमा सतयुग त्रेता में नहीं रहेगा तो वापर में ऊपर कैसे जाएगा?
और सतयुग त्रेता के बाद
पृथ्वीकर्षण बल होगा क्या?
अच्छा हाँ बोलो।
चंद्रमा सतयुग त्रेता में नहीं रहेगा तो वापर में ऊपर कैसे जाएगा?
ऊपर कैसे जाएगा, बड़ी भारी समस्या हो गई। और और दूसरी समस्या,
क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल से काम करेगा क्या?
गुरुत्वाकर्षण बल से काम करेगा, तो जो ज्यादा वजनी होता है वो हल्के को खींच लेता है। जैसे सूर्य ज्यादा वजनी है ना, और जो ग्रह उपग्रह हैं वो उतने वजन वाले नहीं है, तो सारे ही ग्रह उपग्रह किसके आसपास घूमते हैं? सूर्य के आसपास घूमते हैं। पृथ्वी भी सूर्य के आसपास घूमती है और उपग्रह भी होते हैं ग्रहों के। जैसे पृथ्वी ग्रह है और उसका टुकड़ा उपग्रह चंद्रमा है, तो पृथ्वी भारी है और चंद्रमा टुकड़ा है, तो चंद्रमा टुकड़ा किसके चक्कर काटता है? पृथ्वी माता के चक्कर काटता है। ये नियम है क्या, जो ज्यादा पावरफुल है उसका चक्कर कम पावरफुल काटते हैं। जैसे द्वापर कलयुग में राजाएं हुए, राजाएं तो सतयुग त्रेता में भी होते हैं, लेकिन द्वापर कलयुग में जो राजाएं हुए वो मंदिरों का चक्कर काटते हैं कि नहीं काटते हैं? देवताओं का चक्कर काटते हैं ना, क्यों? क्योंकि देवताएं पवित्र होते हैं, पवित्रता भारी होती है, भारी पड़ती है, और अपवित्रता हल्की होती है, तो उनको चक्कर काटने पड़ते हैं। तो ये चंद्रमा जो है पृथ्वी के मुकाबले पावरफुल है या कमजोर है? हैं, बच्चा है या रचयिता है? रचना है। तो ये चंद्रमा अभी जब संपूर्ण विनाश होगा तो पृथ्वी के आकर्षण में आ जाएगा, और जो प्रशांत महासागर का जो गड्ढा है बहुत बड़ा, बहुत बड़ा समुद्र का नाम है प्रशांत महासागर। ऐसे तो सात सागर हैं, लेकिन उन सात सागरों में बड़ा सागर प्रशांत महासागर है। जब आकर्षण होगा तो वो चंद्रमा उसी प्रशांत महासागर में समा जाएगा। तो उस समय पृथ्वी का जो जल स्तर है वो बढ़ जाएगा या घटेगा? बढ़ जाएगा। ये भी एक कारण हुआ। ये अमेरिका, ये ऑस्ट्रेलिया, ये अफ्रीका, ये यूरोप, ये रशिया, ये सब देश समुद्र के गर्त में समा जाएंगे। क्योंकि एक तो उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव पर जो बर्फ के बने हुए बड़े बड़े मीलों ऊंचे पहाड़ हैं, वो सब एटम बमों के धमाके से गर्मी होगी वातावरण में तो फट पड़ेंगे और समुद्र में आ गिरेंगे। तो भी समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। तो इस तरह सारी पृथ्वी जलमयी हो जाएगी। क्या उस जलमयी में कौन कौन डूब जाएंगे? सारी दुनिया नहीं डूबेगी। भारत तो अविनाशी खंड है, यहाँ भगवान आता है। जहाँ भगवान आता है वहाँ ज्ञानी तो आत्माएं होंगी या विदेशियों विधर्मियों की तरह अज्ञानी आत्माएं होंगी? तो जो ज्ञानी आत्माएं हैं वो समंदर को पार करने वाली होंगी या समंदर में डूबने वाली होंगी? पार करने वाली होंगी। इसलिए भारत देश रह जाएगा और बाकी सब डूब जाएंगे। अच्छा, अब माता का प्रश्न है कि चंद्रमा पृथ्वी से मिल जाएगा तो वो छिटक के अलग कैसे हो जाएगा? तो कलयुग के अंत में संपूर्ण विनाश होता है, तो कभी आधा विनाश भी तो होता होगा। सतयुग त्रेता के बाद अर्ध विनाश होता है। जब आधा विनाश होता है तो भी क्या होता है? जो प्रशांत महासागर का हिस्सा है वो छिटक करके फिर बाहर चला जाता है और चंद्रमा अलग हो जाता है और पृथ्वी अलग हो जाती है। पहले चंद्रमा बच्चा, कृष्ण बच्चा किसकी गोद में था? भारत माता की गोद में था। जब बच्चे छोटे छोटे होते हैं सतो प्रधान महात्मा तो किसकी गोद में खेलते हैं? माता की गोद में खेलते हैं। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माता के ही ऊपर कंट्रोल करने लग पड़ते हैं। तो ऐसे ही है, वो दूरी बढ़ जाती है।
बाबा, आजकल हद के जो आसाराम बापू जी हैं बड़े सिकंजे में चल रहे हैं। तो ब्राह्मणों की दुनिया में या संघ में यहाँ कैसे उसकी शूटिंग होती है जो ब्रॉड ड्रामा में वो फिल्माई जाती है?
ब्राह्मणों की दुनिया में जो बेहद के तुम्हारे आसाराम बापू हैं उनको जेल में नहीं डाला गया तो शूटिंग नहीं हुई?
शूटिंग
है। अरे दुनिया में सारे ही पतित भ्रष्टाचारी हैं, या अकेला आसाराम बापू पतित भ्रष्टाचारी है? ये जो बड़े बड़े नेता हैं, जो कानून बनाते हैं, है वो पतित नहीं है? है, सब पतित हैं। पतितों की दुनिया में आसाराम बापू भी छोटा पतित होगा या बड़ा पतित होगा? और तो बड़ा पतित होना चाहिए। तो क्या नई बात हो गई?
बाबा, स्वर्ग मुझे स्वार्थ साथ के सरने में गोली नारायण नमोस्ते इसका अर्थ बाबा। स्वर्ग मंदिर, स्वर्ग मंदिर, स्वार्थ साधने सबनेम में गोरी नारायण नमोस्तु।
ये तो कोई पढ़ने से मंत्र
सर मंगले मांगले शिवे सर्वारत साधके शरणे मां त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। इसका अर्थ जानना चाहते
हैं? नारायणी तो देवी है ना, देवी है ना, और देवी देवता से अलग है या जुड़ी हुई है? है जुड़ी हुई है, और जब तक जुड़ी हुई नहीं है तो देवता की जीत होती है? नहीं, जीत ही नहीं होती। इसलिए कोई भी शुभ कार्य करते हैं, सिद्धि करते हैं, जीवन सफल बनाना है तो देवता के लिए देवी जरूर चाहिए, और वो तीन देवियां प्रसिद्ध हैं, त्र्यंबके। कौन कौन तीन देवियां हैं? तीन देवताएं हैं मुख्य, तो देवियां भी तीन है। हाँ
बाबा, एक अभी जो ग्लेशियर में से 45 साल के बाद लाश मिली है, एक एक फौजी की, दो तीन फौजियों की मिली है, यहाँ तक के 45 साल के बाद घर वालों ने भी उनको पहचान लिया है। तो जैसे जैसे हम बोलते हैं दुनिया को कि बर्फ में लाशें दब जाएंगी, ऐसे द्वारा दुनिया आएगी, तो उसका एक प्रूफ कुदरत ने छोड़ा है या बाबा ने किया है, वो सामने आया है, एक ये कैसे मेल खा गया?
वो तो लाश है और यहाँ तो चैतन्य निकलेंगे या मुर्दा बन के निकलेंगे?
चैतन्य निकलेंगे, लेकिन लाश 45 साल सेफ पड़ी रही।
बर्फ में कोई भी चीज रख दो, ज्यों की त्यों रखी गई रहेगी या सड़ेगी? तो वो रखी रही। और
ये जो प्रूफ आया है,
हाँ,
कलकत्ते में काली माता की सबसे ज्यादा पूजा होती है।
कलकत्ते में काली माता की सबसे ज्यादा पूजा क्यों होती है? क्योंकि भगवान जब इस सृष्टि पर आते हैं तो दुनिया का बड़े से बड़ा शहर है जिसमें सबसे जास्ती वैश्यावृत्ति चली हो वो कौन सा शहर है? कलकत्ता है। तो कलकत्ता जो है वो महाकालियों के लिए प्रसिद्ध है। क्या? काला मुंह करने वाली महाकाली। और
बाबा, हम लोग को रिक्शा कब तक चलाना पड़ेगा?
जब तक जी कर
रिक्शा चलाने, कब तक चलाना पड़ेगा रिक्शा? बाबा
पूछ रहे हैं, उन्होंने रिक्शा चला रहे, कब तक चलाना पड़ेगा?
जब तक तुम्हारा कर्म बंधन होगा तब तक चलाना पड़ेगा। तुमने कलकत्ते में जो रिक्शा चलाने वाला भाई होता है ना, एक भाई बग्गी खींचता है, जैसे घोड़े खींचते हैं, बैल खींचता है, भैंसा गाड़ी खींचता है, ऐसे एक आदमी बग्गी खींचता है और उसमें दो तीन बैठते हैं। क्या? बड़े मौज में ये। तो आपने ऐसा किया होगा, और उस बेचारे की, रिक्शा खींचने वाले की अटकेलियां उड़ाई होंगी, है ना, टांट मारे होंगे। तो जितना जितना तुमने किया होगा उतना ही तुमको करना पड़ेगा। हाँ, तो क्या हो गया? कोई कोई को तो जिंदगी हो गई रिक्शा चलाते चलाते, ये तो 10 साल ही हुए। और
उड़ीसा में दिखाते हैं सूर्य टेम्पल, तो सूर्य टेम्पल जब कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा था तभी धर्मपद, उसकी जितनी सारे मिस्त्री थे वो उनकी जो ध्वजा ऊपर लगाते थे वो कोई लगा नहीं पाया, कि धर्मपद जाकर के उसको अकेला ही लगाता है और समुद्र में छलान लगाता है, तो उसका शूटिंग कैसा होता है? उसका शूटिंग कैसा होता है? और उस सप्त आश्चर्य में एक ही आश्चर्य भी होता है।
उड़ीसा में कौन सा सूर्य मंदिर?
कोणार्क।
क्या बताया? कोणार्क में क्या हुआ?
1200 मिस्त्री लगे थे काम संपन्न के लिए टेम्पल का
है?
जब टेम्पल बन रहा था टेम्पल, तभी 1200 मिस्त्री लगे थे संपन्न करने के लिए। तो उनको राजा ने बताया कि ये संपन्न करना ही है। उन्होंने सभी कुछ किए मिस्त्रियों ने, लेकिन ऊपर तो ध्वजा लगाने का था मंदिर के ऊपर, वो लगा नहीं पाए। फिर वो एक जो एक मिस्त्री होता है उसका एक लड़का होता है, तो वो आकर के वो ध्वजा को संपन्न करता है। तो राजा को छुपाया जाता है कि ये अगर बताएंगे तो सर सारे 1200 मिस्त्री का सर कलम हो जाएगा। जो सारे 1200 मिस्त्री है
क्या करेंगे,
राजा सर कलम कट कर देगा।
राजा
सर काट देगा
मिस्त्रियों का। क्यों?
क्योंकि ध्वजा लगा नहीं पाए करके।
अच्छा, एक ने लगा दी,
एक छोटा बच्चा ने लगाया जाकर।
हाँ,
फिर वो बच्चा ने जाकर समुद्र में अपन जीवन देता है।
हाँ, सागर में अपने को मिला दिया। वो तो कहते हैं बूंद सागर में मिल गई। तो ये तो बात कहाँ की है, कैसे संगम में झंडा ऊंचा रहे हमारा, और झंडे को ऊंचा स्थापन करने वाला कोई तो एक रहा होगा, जो रहा है उसके लिए गायन है, दूसरों के लिए गायन नहीं है। तो उनमें कौन है जिसने झंडा ऊंचा कर दिया सूर्य मंदिर में? फिर अब वो पूछते क्यों? हाँ,
अच्छा बाबा,
अरे हाँ,
फरुखाबाद का बेहद में क्या अर्थ
है?
फरुखाबाद का बेहद में क्या अर्थ है?
अरे ये क्या बात बड़ी हो गई, फर फर माने जल्दी से, खा माने खा लिया, बाद बाद में। जब फरुखाबाद वालों को पता चलेगा कि विश्व का मालिक हमारे यहाँ पैदा हुआ है, तो वो जोश में आ जाएंगे कि नहीं? जोश में आ जाएंगे, और फर से सारी दुनिया को खा जाएंगे। नेहरू जी कहाँ के जन्म लेने वाले थे? अल्लाहाबाद। क्या नाम, क्या टाइटल क्या दिया उन्हें? नेह का रूह। काई की रूह? स्नेह करने वालों की रूह, स्नेह वाली रूह। जो नेहरू अल्लाहाबाद में जन्म लेता है, तो वो कहां से इलेक्शन लड़ते रहे और हमेशा जीतते रहे? क्यों? इलाहाबाद वाले ही उनको क्यों जिताते रहे? देश के दूसरे हिस्से में उन्होंने इलेक्शन क्यों नहीं लड़ पाया? है? हाँ, क्योंकि जिसका जहाँ जन्म होता है, कोई बड़ा आदमी बन जाता है, तो वहाँ के लोगों को उसका बहुत फख्र रहता है। ऐसे यहाँ भी है, नाम बढ़ गया, फर रखा बाप। हाँ
बाबा,
हाँ,
संगम युग पर किसी को तो ज्ञान ब्रह्मचर्य आश्रम में मिल जाता है, किसी को ज्ञान गृहस्थ आश्रम में मिलता है, किसी को ज्ञान वानप्रस्थ आश्रम में मिलता है, और किसी को ज्ञान वानप्रस्थ आश्रम में मिलता है, तो ऐसे क्यों बाबा? कौन से कर्म हमारे ऐसे हो गए?
सबसे बढ़िया इनमें कौन है?
ब्रह्मचर्य आश्रम में अगर ज्ञान मिलता है, अगर ब्रह्मचारी आश्रम में ज्ञान मिल गया, वो ही सबसे बड़ा है ना, जल्दी ज्ञान मिलना।
आपने ब्रह्मचारी नाम ही क्यों लिया, ब्रह्मचारिणी नाम क्यों नहीं लिया?
बाबा जो गया हुआ है, जो बुक्स में पढ़ा है,
हाँ,
तो वही नाम सुना है ना?
क्यों? अभी कन्याएं ज्यादा आगे जा रही हैं प्योरिटी के मामले में, प्योरिटी के पुरुषार्थ में, के और दूसरे वर्ग आगे जा रहे हैं, तो ब्रह्मचारिणी है, वो आगे जाती है, तो उनके लिए सबसे बढ़िया।
नहीं, हमारी क्या ऐसी कमी है कि बाबा को मतलब ज्ञान हमें मिला है बेसिक में 40 साल के बाद मिला है?
क्या कमी है? एक ही जन्म है, आपने लिया
एडवांस में? नहीं, तो इसका मतलब क्या रहा ना, बीच में क्या
माने, आपने एक ही, आपकी आत्मा ने एक ही जन्म लिया क्या?
एक इस जन्म में तो इतना गैप हो गया।
21 जन्म छोड़ दो, वो तो हो गए बराबर। 63 जन्मों में हमारे ही कर्म है कि कोई कन्या का जन्म लेते हैं, बाबा के नजदीक पहुंच जाते हैं, सहज सहज है। कोई कुमारों का जन्म लेते हैं, बाबा के नजदीक रहते हुए भी नजदीक नहीं पहुंच पाते हैं। कोई अदर कुमार का जन्म लेते हैं, बंधन में बंधे रहते हैं, परिवार की परवरिश करनी है। कोई अदर कुमारी का जन्म लेते हैं। तो ये सब पूर्व जन्म के हिसाब किताब है, इसे एक जन्म की बात नहीं है। पूर्व जन्मों के हिसाब किताब के आधार पर हर आत्मा संगम युग में बाप के ऑटोमेटिक नजदीक या दूर रहती है।
बाबा संसार में रहते हुए बुद्धि से बाबा के करीब रहना ही बाबा के करीब करीबी है।
बाबा कहेंगे कि बुद्धि से नजदीक है, तो इससे साबित क्या होता है?
करीब है
नहीं। जो बुद्धि से लगातार लक्ष्मी की तरह है, जगदम्बा की तरह नजदीक है, इसे साबित होता है पूर्व जन्मों में कहाँ रहा होगा? नजदीक ही रहा होगा। इसलिए यहाँ दूर होते हुए भी नजदीक रह सकता है। और कोई कोई ऐसे हैं कि सरेंडर हो जाते हैं, बाबा के घर मधुबन में ही रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, और बुद्धि घर में भागती रहती है। क्या तो वो नजदीक है या दूर है? दूर हो गए। और
बाबा जो जगन्नाथ के घर में जो जगन्नाथ का स्टैच्यू बनाया हुआ है,
माधुरी पांडव पांच थे,
माधुरी बाबा
पांच पांडव थे और उनकी दो माताएं थी, बाप एक ही था। क्या बाप एक ही था और वो पांचों पांडव भारतीय थे या विदेशी थे? भारतीय थे। भारतीय होते हुए भी उनमें दो पांडव ऐसे थे जो छोटे थे और तीन पांडव बड़े थे। जैसे बाबा कहते हैं अर्जुन की बात, तो क्या एक ही अर्जुन की बात है या तुम सब नंबरवार अर्जुन हो? ऐसे ही ये पांच पांडवों की बात है। झाड़ के चित्र में जो पांच भारतीय धर्म दिखाए गए हैं, कौन कौन से हैं? सूर्यवंश है, चंद्रवंश है और बौद्धी वंश है, सन्यासी और सिख। तो सबसे छोटे कौन हुए जो भगवान से प्राप्ति करते हैं? सन्यासी और सिख। वो जैसे कि नकुल और सहदेव है, और वो किसकी गोद में पले होंगे बचपन में? किससे जन्म लिया होगा? माद्री से। माद्री नाम पड़ता ही है मंदबुद्धि। क्या? मंदबुद्धि। तो मंद से जन्म लिया, इसलिए वो छोटे हुए। और दूसरी बड़ी माता का नाम था कुंती, जिसे नाम दिया है शकुंतला। कुंता कहते हैं पक्षियों को। पक्षी काहे से उड़ते हैं? पंखों से। यहाँ कौन से पंख हैं? ज्ञान योग से पंखों से उड़ने वाली कुंती, ज्ञान के आधार पर अपना व्यवहार करती थी, कार्य करती थी। तो कुंती से युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन का जन्म होता है। ये पांचों ही भारतीय हैं जिन्हें पांडव कहा जाता है।
बाबा गोवर्धन पर्वत जो है वो एक छोटी उंगली पे उठाया दिखाया जाता है, जो कि ये उंगली सूचक है सिख धर्म का। तो सिख धर्म की कौन सी ऐसी आत्माएं हैं जो यज्ञ में ऐसा सहयोग देती हैं?
सिख धर्म से एडवांस में पहली पहली कौन कन्या सरेंडर हुई? जगदम्बा है तो यहाँ सब बैठे हुए थे, बैठे हुए हैं। और जगदम्बा ना होती, पहले पहले समर्पित ना हुई होती तो ये इतने न होते। आदि में जो बीज बोता है उसका फल जास्ती निकलता है।
तो जगदम्बा जो है वो सिख धर्म से कनेक्टेड है,
पंजाबी खून है। और
बाबा जो जगन्नाथ टेम्पल में जो स्टैच्यू बना हुआ है,
स्टैच्यू
हाँ, हाँ, तो वो जो उसका ऐसा गायन है कि जो कृष्ण द्वापर में था तो उसकी जो जब उन्होंने सौभद्र ने शरीर उनकी पाँव में भेद करवा दिया, कृष्ण के शरीर कृष्ण की पाँव में जब तीर ने भेद करवाया सौभद्र ने, तो उसके बाद कृष्ण ने शरीर छोड़ा। फिर वो समुद्र में लेटे लेटे आकर के पूरी में लगा, फिर उसको राजा ने ला करके समुद्र में उसमें जगन्नाथ का बनाया स्टैच्यू। तो उसका उसको ज्ञान में कैसे समझेंगे?
क्या ज्ञान में कैसे? और लंबी लंबी कहानी बना, मूल बात पूछते क्या है आप?
बाबा लक्ष्मी नारायण के चित्र में है, नारायण की पूरी बाजू में है और लक्ष्मी की आधी बाजू में है।
हाँ, उनकी बात हल नहीं करना है, वो भी तो कुछ पूछ रहे हैं, पूछ नहीं पा रहे।
कृष्ण का जो कृष्ण जब भी पाठ बजा रहे थे, उन्होंने जब भी शरीर छोड़े तो सबर ने उनके पांव में तीर लगाया, इसके कारण उन्होंने शरीर छोड़ दिया। फिर वो शरीर जाकर के समुद्र में लेटे लेटे जाकर के पूरी में लगा,
सागर में मिल गया। हाँ,
उसको महाराज की फिल्टर करके लेके आया, समुद्र से उठा के लेके आया।
हाँ,
फिर उसके बाद उसकी स्टैच्यू बनाया, पूजा जगन्नाथ आज के दिन में पूजा हो रही है। तो उसको ज्ञान में कैसे समझेंगे?
कृष्ण कौन है?
ब्रह्मा।
कृष्ण कौन वह है?
ब्रह्मा बाबा।
ब्रह्मा बाबा के बुद्ध रूपी पांव में किसी ने तीर मारा कि नहीं? तो तीर मारा तो बुद्धि में छेद हुआ कि नहीं? बुद्धि में छेद हुआ तो हार्ट फेल हुआ कि नहीं? जब हार्ट फेल हो गया, शरीर छोड़ दिया, तो कहाँ जाके चला गया, बह गया? सागर कौन है?
ज्ञान का सागर।
ज्ञान का सागर है। सागर पृथ्वी से चिपक के रहता है या सूर्य की तरह दूर रहता है? कौन है सागर?
प्रजापिता
सागर हो गया। तो वो सागर में बह गया। अब उसका उन्होंने यादगार बना दिया। तो इस समय जो यादगार बनते हैं, किस समय की यादगार? संगम की यादगार है। और
जगन्नाथ क्या बनाया
है? जगन्नाथ नहीं है वो,
ब्रह्मा।
अरे श्रीनाथ जगन्नाथ, मुरली में बोला श्रीनाथ जगन्नाथ है एक ही चीज। पर्सनालिटी एक है या अलग अलग है? परंतु जैसा देश वैसा उनको भोग लगाए, पूजा करते हैं। तो एक ही है कि अलग अलग है? एक ही है, पर्सनालिटी तो एक ही है
बाबा। लेकिन मुरली में बाबा ने बताया है कि जो विश्वनाथ जगन्नाथ वो रामवाली आत्मा का पाठ है।
विश्वनाथ जगन्नाथ रामवाली आत्मा का पाठ है।
ठीक है, जगत कहो विश्व कहो, बात तो एक ही हो गई।
हाँ श्रीनाथ जो है वो कृष्ण ब्रह्मा की और जो श्रीनाथ है वो ब्रह्मा बाबा की पार्टी करके
वो क्या कैसे अरे तुम प्रश्न तो पूछो क्या पूछ रहे हो है पूछना क्या चाहते
मतलब अभी उनको वही पार्ट को फिर दोनों समझे राम बलि आत्मा और ब्रह्मा दोनों
अरे दोनों जब एक शरीर में प्रवेश होकर के पार्ट बजाते हैं तो जब संपन्न बनेंगे तो दोनों ही बनेंगे कि एक बनेगा तो श्रीनाथ जगन्नाथ एक हो जाते हैं और
बाबा 5 सितंबर को टीचर डे क्यों मनाता है
5 सितंबर को
टीचर डे मनाते हैं ना बाबा 5 सितंबर को जो 5 सितंबर का डे है वो टीचर डे के रूप में मनाया जाता है
हाँ
तो क्यों मनाते हैं बोलते हैं 5 सितंबर
कल ही तो स्कूल में टीचर डे होती है बाबा अजय पान
ये टीचर डे क्यों अध्यापक दिन क्यों नहीं ये अंग्रेजों की परंपराएं हैं
बाबा एक मुरली में आया है जैसा जैसा कोई पुरुषार्थ करते हैं वैसा वैसा पद पाते हैं कोई साहूकार कोई प्रजा कोई गरीब प्रजा तो बाबा सतयुग में तो गरीब अमीर की बात ही नहीं है वहाँ तो आत्माभिमानी हो रहते हैं वहाँ गरीब अमीर की तो बात ही नहीं है तो ये बात गरीब प्रजा साहूकार है कहाँ
गरीब होते हैं तो भी खाने पीने रहने के लिए भरपूर होता है कि कम होता है
सतयुग में होता है ठीक सतयुग में ठीक होता है सब
सतयुग में भले राजा नहीं है राज परिवार में नहीं है प्रजा वर्ग में है और प्रजा भी 4 प्रकार की होती है साहूकार प्रजा बड़े बड़े साहूकार भी होते हैं कोई छोटे छोटे साहूकार होते हैं कोई सामान्य प्रजा होती है कोई एकदम लो कास्ट की प्रजा जैसे चांडाल तो चांडाल की जो प्राप्ति होगी राज्य में चांडाल को जो पेमेंट मिलेगा वो क्या मंत्री को भी मिलेगा महामंत्री को मिलेगा तो ऊंच नीच तो हर युग में होते हैं
मतलब सतयुग में फीलिंग नहीं होगी वहाँ अमीर गरीब होंगे जरूर
क्या
मतलब अमीर गरीब सतयुग में होते हैं
दुखी कोई नहीं होगा दुखी कोई नहीं होगा धन के लिए और
नारायण की पूरी बाजू और लक्ष्मी की अधूरी बाजू क्यों दिखाई गई
ओहो बाजू माने क्या हैं सहयोगी तो नारायण के जो सहयोगी हैं वो मुख्य सहयोगी कितने हैं 4 हैं
16108
नारायण को भुजाएं होती हैं 8 भुजाएं 8 मददगार हैं दीर्घ बाहु कहा जाता है अर्जुन को वैसे भी भक्ति मार्ग में बोलते हैं कि भगवान को तो बड़ी लंबी लंबी भुजाएं तो जो भगवान का पार्ट है नारायण का पार्ट है उसको जो सहयोगी हैं वो आदि से अंत तक सहयोग देने वाले क्या आखिरी जन्म को छोड़ करके और लक्ष्मी को ऐसे सहयोगी जीवन में नहीं मिलते हैं परख शक्ति की बात है जो सहयोगी बनाए जाते हैं जो मित्र बनाए जाते हैं वो परख के बनाना है या ऐसे ही अज्ञान की स्थिति में बनाए लेना है परख के बनाना है और
ओम मंडली की स्थापना किस सन में हुई ओम मंडली की स्थापना किस सन में हुई
किस सन में हुई हाँ ओम का अर्थ क्या है आ उ मा आ माने ब्रह्मा, ओ माने विष्णु, क्योंकि बाद में बनता है इसलिए आखिरी मात्रा है उ आखिरी अक्षर में, और महेश अब्बल नंबर है माँ, तो उसका माँ ले लिया। तो ये तीन अक्षर हैं, तीन देवताओं की यादगार हैं, तीन कार्यकर्ताओं की यादगार हैं। ये तीन कार्यकर्ता शिव के हैं। कितने कार्यकर्ता हैं शिव के? शिव के तीन कार्यकर्ता हैं। जब शिव आते हैं तो अकेले आते हैं या तीनों कार्यकर्ताओं के साथ आते हैं? तो जब शिव आते हैं क्या, जब बीज बोने के लिए, ज्ञान का बीज बोने के लिए शिव आते हैं, उसी समय ओम मंडली तैयार होती है।
हैं
1947 तक,
1936 से लेके 47 तक किसके माध्यम से वाणी चलती रही?
आदि में पीयू के द्वारा, फिर सिंध हैदराबाद में झगड़ा हो गया, ब्रह्मा बाबा भी भाग गए, और जो दो माताएं थी वो तो पहले ही बाबा के घर में थी। वो दोनों माताएं, उनको भी गलतफहमी हो गई, तो वो दोनों माताओं में एक माता ऐसी थी जो बहुत पावरफुल थी, जिसमें प्रवेश करके बाबा ब्रह्मा बाबा को 10-15 पेज लिखाते थे और ब्रह्मा बाबा बैठ करके लिखते थे और उसकी कापियां निकलती थी और वो सवेरे को पढ़ करके सुनाई जाती थी। तो माताएं भी हैं क्या? माताएं भी हैं ब्रह्मा और पुरुष भी हैं ब्रह्मा, जिसमें शिव बाबा प्रवेश करते हैं उनका नाम क्या पड़ता है? ब्रह्मा। तो
बाबा केदारनाथ में जब इतना विध्वंस हुआ, मौत का तांडव हुआ है, तो उसका बेहद में क्या है?
जो विध्वंस हुआ वो ज्ञानियों का हुआ या भक्तों का हुआ? तो भक्ति मार्ग है, भक्ति मार्ग आगे आगे जा रहा है या ज्ञान मार्ग आगे आगे जा रहा है? भक्ति मार्ग आगे आगे जा रहा है। तो भक्ति मार्ग में ये दृश्य दिखाया गया कि पहले पहले किसका विनाश होगा, भक्तों में भी किसका विनाश होगा, भक्तों की लिस्ट में कौन कौन से धर्म हैं? हैं
सन्यास धर्म,
हाँ, जो सूर्यवंश और चंद्रवंश हैं, वो तो देवता बन जाते हैं, ज्ञानी आत्मा बन जाते हैं, आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाते हैं। बाकी द्वापर युग से इस्लामी, बौद्धी और क्रिश्चियन, ये तीन हैं। उन तीन के तीन बीज हैं, उनमें जो केदारनाथ है वो इस्लाम धर्म का बीज है, यादगार है। और सबसे पहले कौन मरेंगे? इस्लामी मरेंगे, इस्लामी मरेंगे। और सबसे पहले द्वापर युग जब शुरू हुआ तो विधर्मियों में कौन ताकतवर होकर आ गए? इस्लामी आ गए। जो पहले आए वो ही पहले जाएंगे। तो केदारनाथ में वो दिखाया गया है कि जब विनाश हुआ तो मंदिर बच गया, मंदिर की मूर्ति भी बच गई और मंदिर के पुजारी भी बच गए। ये यहां की बात है। ज्ञान मार्ग में भी जो प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाला केदार, वो बचेगा। जैसा मुसलमान लोग भी कहते हैं कि जब विनाश होगा तो खुदा के बंदे बड़े मौज में रहेंगे। हाँ
बाबा केदार की फुल फॉर्म क्या है?
सब बात पहले से नहीं बताई जाती है, सारी बातें पहले से बता देंगे तो आगे चल के क्या बताएंगे।
हाँ बाबा,
हाँ
सेवा अर्थ हमने
माता जी आप बताइए, ये तो ऐ करते रहते घंटे भर में अपना प्रश्न बोलते। हाँ
अर्जुन तो कर्म कर फल की इच्छा मत कर। अर्जुन तो कर्म कर फल की इच्छा मत कर।
हाँ
बाबा, यहाँ अगर हम लक्ष्य रखते हैं कि हम एक तो आपने आएंगे तो ये इच्छा मात्र कहा गया।
अरे इस दुनिया का कोई इच्छा न कर, इस शरीर के लिए कोई इच्छा न कर, ये नहीं कहा कि भविष्य के लिए कोई इच्छा न कर। दुनिया जो कर्म करती है वो कहाँ के लिए कर्म करती है, कहाँ की प्राप्ति के लिए कर्म करती है? शरीर छोड़ने के बाद के लिए प्राप्ति कर, वो कर्म करती है नहीं। तो दुनिया की बात बताई कि इस दुनिया के लिए कोई फल की इच्छा न कर, आत्मा का कल्याण करना है कि शरीर का कल्याण करना है? शरीर तो इस एक जन्म के लिए है और आत्मा का बाप परमपिता परमात्मा शरीर के कल्याण के लिए आया है कि आत्म कल्याण के लिए आया है? तो आत्मा का कनेक्शन 84 जन्मों से है, इसलिए तू इस जन्म के लिए कोई फल की इच्छा न कर। और
बाबा अभी शीश महल नहीं बना है?
नहीं बना है अभी शीश महल नहीं बना है। वो उस समय की बात है, मुरली मना ब्रह्मा बाबा जब जीवित थे उस समय ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं हुआ था, इसलिए बोला अभी शीश महल नहीं बना है। जो शीश महल होता है उसमें चारों ओर शीशे लगे हुए हैं, क्या उन शीशों में उधर का इधर, इधर का उधर, उधर का उधर, चारों तरफ का यहाँ दिखाई देता है। तो अभी शीश महल नहीं बने हैं, माना ब्रह्मा जब तक जीवित रहे तब तक शीश महल नहीं बना। कारण क्या? क्योंकि अभी गीता ज्ञानामृत नहीं कहेंगे, ये कारण था, इसलिए शीश महल नहीं बना। और अब अभी तो ज्ञान का अमृत सामने आ गया ना, तो अभी मधुबन भी शीश महल है। कोई अपनी करतूतों को छिपाना चाहे, कमरे में बंद होकर के कोई करतूत उल्टी पलटी करे श्रीमत के बरखिलाफ और सोचता हो हमारी तो छिपी हुई रहेगी, कोई नहीं जानेगा, लेकिन उस शीश महल में कुछ भी छिपा हुआ नहीं रहता, क्योंकि गीता में ही बोला हुआ है अनेक बाहु दरवक्त्र नेत्रम, भगवान को अनेक भुजाएं हैं, सहस्त्र आंखें हैं, सहस्त्र कान हैं, उससे कैसे छुपेगा? तो शीश महल अब है और आगे चलते चलते क्लियर शीश महल बनेगा। ऐसा शीश महल बन जाएगा जो कोई भी विकारी यहाँ प्रवेश ही नहीं कर सकेगा। और
जैसे बोलते हैं कि पुरुषार्थ करो, अष्टदेव बनेंगे, राजा बनेंगे, रानी बनेंगे, सेठ बनेंगे, सेठानी, ये सोच सोच करके पुरुषार्थ करें या लगातार सेवा में लगे रहे, तन से मन से वाचा से कर्म से संबंध से, इसके बारे में सोचे ही ना, वो अच्छा।
जो सन्यासी होते हैं वो कोई लक्ष्य रखते हैं जिंदगी का? रखते हैं? कोई जिंदगी का लक्ष्य नहीं रखते। आज पूछने वाला है ना, बचपन से सन्यासी रहा है, ये सन्यासी रहा है तो इसके दिमाग में बात ही ऐसी आती है।
बाबा की सेवा में लगे रहो।
हाँ हाँ बाबा की सेवा में बाबा की इच्छा अनुसार लगे रहो या अपने मनमानी चाल चलते रहो।
मनमानी चाल किसी को अपना बनाए, सबको बाप का बनाए तो वो तो मनमानी चाल नहीं है ना। जिसको भी बनाए वो बाप का बनाते हैं, बाबा का बनाते हैं, कोई अपना बना के तो रखते नहीं है किसी को।
हाँ
जिसको भी किसी भी ढंग से बनाए।
हाँ
अगर बनाएंगे तो बाप का ही बनाएंगे ना उसको।
अब ये पर्सनल बातें अभी छोड़ दो।
अच्छे के लिए पूछा, पर्सनल बातें नहीं पूछी।
पर्सनल बातों को पर्सनल बैठ के करेंगे। हाँ
ज्ञान वैराग्य है, ज्ञान का भक्ति का फाउंडेशन आदि में पड़ा था, तो वैराग्य का फाउंडेशन किस समय और किसके द्वारा?
जब परम धाम जाने का टाइम होगा तो काय का फाउंडेशन पड़ेगा, वैराग का फाउंडेशन पड़ेगा। वैराग का मतलब क्या है? वे राग, राग माने प्यार, इससे प्यार, उससे प्यार, इससे प्यार, इन संबंध से प्यार, उस संबंध से प्यार, इस संबंध से प्यार, उसे कहते हैं राग। और वैराग माने देह के साथ संबंध त्याग दिए, कोई संबंध से प्यार न रहा, देह के साथ पदार्थों को त्याग दिया। इच्छा मात्रम अविद्या, एक से प्यार हो गया। और वो एक कहां का रहने वाला है? परमधाम का रहने वाला है। तो वो जहां ले जाएगा बस उसी देश से प्यारा बगैर जाना है, और कुछ नहीं सुझाई पड़े। उसको कहेंगे असली प्यार, वैराग।
नारायण के खुले बाल क्यों दिखाई
देता है? हाँ
लक्ष्मी के नहीं, नारायण के क्यों दिखाई है खुले बाल बाबा?
क्या
बाबा देवी देवताओं के लड़ाई है बाबा?
हाँ
खुले क्यों दिखाई है बाबा?
हाँ और लक्ष्मी को?
लक्ष्मी के नहीं दिखाई,
अरे वही नहीं बोल लेने दो ना
बाबा।
लक्ष्मी के
नारायण,
लक्ष्मी के बाल नहीं दिखाई, कुल नारायण के दिखाई। हाँ समझ गया। नेक्स्ट टू शिव बाबा इज नारायण, नेक्स्ट टू शिव बाबा इज कृष्ण, नेक्स्ट टू शिव बाबा इज अ प्रजापिता। बोला है कि नहीं? तो कृष्ण कहो, नारायण कहो, नेक्स्ट टू शंकर इज नहीं, नेक्स्ट टू शिव बाबा इज शंकर। तो ये चारों नाम लिए, नेक्स्ट टू शिव बाबा एक होगा या चार चार होंगे? तो ये चारों एक ही हैं या अलग अलग हैं? और शंकर की जो जटाएं हैं, जब गंगा जी आती है, ज्ञान गंगा आती है कि नहीं? ज्ञान गंगा आती है तो जटाओं को खोल देते हैं कि बांध के रखते हैं? कहां समा जाती है? हैं? जटाओं में समा जाती है। जटाएं जैसे ज्ञान का सागर हैं। जटाएं क्या हैं? ज्ञान का सागर है और गंगा नदी है। गंगा नदी बहते 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 जब बंगाल की खाड़ी की ओर पहुंचती है तो पहले तो झगड़ती है या सीधी समा जाती है? पहले वाद विवाद होता है गंगा सागर में, गंगा के साथ ब्रह्मपुत्रा, यमुना, सरस्वती, गोमती, ये सारी नदियां, घाघरा आदि सारी मिलकर के इकट्ठी होकर के सागर से झगड़ पड़ती है। तो वहां पानी की बड़ी ऊंची ऊंची दीवार खड़ी हो जाती है। क्या? सागर में मिल नहीं पाती है नदियां, विघ्न बन जाता है। आखिरीन क्या होता है? आखिरीन फिर भी चाहे गंगा हो, चाहे यमुना हो, चाहे ब्रह्मपुत्र हो, सबको सागर में समाना ही पड़ता है। तो ये जटाएं क्या हैं? हैं? ये जटाएं सागर हैं, ज्ञान का सागर है। उस सागर में गंगा जैसी नदियां समा जाती है। इसलिए नारायण को इतने बड़े बड़े बाग दिखाए। और
हाँ, बिना विवेक का विराग न होने,
बिन विवेक
हाँ हाँ उल्टा बोल दिया,
बिन विराग विवेक न होवे।
ओ उल्टा बोलता है, बिन वैराग विवेक न हुई। जब अंदर से सच्चा सच्चा इस दुनिया से वैराग आता है, तब सच्चा सच्चा ज्ञान पैदा होता है। जब तक इस दुनिया से, दुनिया के संबंधों से, दुनिया के पदार्थों से सच्चा सच्चा लगाव पैदा है, तब तक ज्ञान नहीं आ सकता। माना अभी हम अपन को ज्ञानी समझते हैं, लेकिन क्या आत्मा के 84 जन्मों का ज्ञान पैदा हुआ है? नहीं हुआ है। इसका मतलब सच्चा सच्चा अभी वैरागी नहीं बने। इसलिए रामायण में कहा है, बिनु वैराग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम उन्होंने देहधारी को समझ लिया। वास्तव में कौन सा राम? जो निराकार राम शिव बाबा है, उसके प्रति जब तक प्यार पैदा नहीं हुआ है 100%, उस एक के प्रति 100% प्यार पैदा होगा तो सबके प्रति वैराग आ जाएगा, और सबके प्रति वैराग आ जाएगा तभी अपनी आत्मा के 84 जन्मों का ज्ञान होगा। एक साथ तो नहीं होगा, होगा तो धीरे धीरे, परंतु जितना जितना वैराग आता जाएगा उतना उतना ज्ञान भी पैदा होता जाएगा, उतना उतना अपने जन्मों का खुलासा भी होता जाएगा।